ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। सरकार ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए उच्च स्तरीय बहुपक्षीय समिति गठित की है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि यह समिति वर्तमान मानक संचालन प्रक्रिया और ऐसी घटनाओं को रोकने तथा निपटने के लिए जारी दिशा निर्देश की जांच करेगी। समिति भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं से निपटने के लिए व्यापक दिशा निर्देश का सुझाव भी देगी। सरकार ने कहा है कि यह समिति विभिन्न संस्थाओं द्वारा की जा रही जांच से अलग होगी और ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने पर ध्यान देगी। इस बीच दुर्घटना में मृतकों की संख्या 254 हो गई है। विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें सिर्फ भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक रमेश विश्वास कुमार हादसे में जिंदा बचे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 4 मेडिकल छात्रों और एक डॉक्टर की पत्नी की मौत की पुष्टि की है। दुर्घटना में आसपास के रिहायशी क्षेत्रों में 8 शवों की पहचान कर ली गई है। डीएनए जांच के लिए मृतकों के रिश्तेदारों के रक्त के नमूने एकत्र किए गए हैं। 31 लोगों का इलाज चल रहा है। आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि योग धर्म और जाति से परे है। नई दिल्ली में वैश्विक शिखर सम्मेलन योग कनेक्ट में उन्होंने कहा कि दुनिया भर में योगाचार्यों की मांग बढ़ रही है।
योग भारत की प्राचीन परंपरा का अमूल्य उपहार है। ये मन शरीर की एकता, विचार और क्रिया, संयम और पूर्ति, मनुष्य और प्रकृति के बीच में सामंजस्य, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण का प्रतीक।
इस सम्मेलन का विषय है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ये सम्मेलन 21 जून को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसमें 1000 से अधिक प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा है कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद शुरू किया गया ऑपरेशन सिंदूर वायुसेना के अद्वितीय कौशल का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन में दुश्मन पर तेज, सटीक और निर्णायक प्रहार करने की वायुसेना की क्षमता को प्रदर्शित किया है। आज हैदराबाद के पास डुंडीगल में वायुसेना अकादमी में संयुक्त स्नातक परेड में श्री सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सशस्त्र बलों में बेहतर समन्वय और एकीकरण को प्रदर्शित किया है। सेना में आज 419 नए युवा अधिकारी शामिल हुए हैं। उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। इसमें 451 कैडेट शामिल हुए, इनमें से 32 कैडेट मित्र देश के हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने आज प्रतिबंधित संगठन हिज्ब उत तहरीर से संबंधित आतंकी साजिश मामले में मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई स्थान पर तलाशी ली। एनआईए ने एक बयान में कहा कि एचयूटी और उसके सदस्यों की गतिविधियों की जांच के तहत भोपाल में 3 और झालावाड़ में 2 स्थानों पर गहन तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान एनआईए की टीमों ने कई डिजिटल डिवाइस जब्त की। कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों का पहला जत्था कल सिक्किम के राजधानी गंगटोक पहुंचेगा। राज्य सरकार ने उनके लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा 5 वर्ष के अंतराल के बाद 20 जून से शुरू हो रही है। पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग के अपर मुख्य सचिव सीएस राव ने कहा कि तीर्थयात्रियों का हर जत्था 11 से 12 दिन में कैलाश मानसरोवर की यात्रा पूरी करेगा।
Tomorrow we are receiving around 35 yatris along with 2 liaison officers. They will be received by our state tourism development corporation officials at Vadodara so that they will come to Gangtok. As informed earlier, 5 days acclimatization formalities are there before crossing the border. First day they are going to stay in Gangtok. Then after that, second and third day, they are going to stay at 17th mile JN road. Then last 2 days they will be shifted to Saritang.
Uttar Bharat ke कई इलाकों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। मौसम विभाग के अनुसार गर्मी से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने राजस्थान के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए कहा कि राज्य में अगले 2 से 3 दिन तक धूल भरी आंधी के साथ भीषण गर्मी की स्थिति बनी रहेगी। जर्मनी में विश्व कप निशानेबाजी में सुरुचि सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। विश्व कप में सुरुचि का इस स्पर्धा में यह लगातार 3रा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त।